الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة آيت 168. يا أيها الناس، أي لوگو، كلوا کھاؤ مما في الأرض حلالا طيبا، ان تمام چیزوں سے جو اللہ نے بنائی ہیں زمین میں حلال اور طیب. اس لیے آیات کے اندر ذکر کس چیز کا ہو رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے تھے، اپنی آیات جو نیچرل فنومنا کی چیزیں ہیں، فزیکل فنومنا کی چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تھا، ان کے اوپر دلیل دی تھی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر غور کرو کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی تھیں، ان کا چلا کون رہا ہے، ان کا نظام کون چلا رہا ہے. اللہ ہی ہے جو چلا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے آیات، کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے لوگوں میں سے پھر بھی ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل لے آتے ہیں. اور ساتھ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر کہہ دیا تھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی بات سب سے زیادہ اہم اور محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم بھی آ رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے انسانیت، وہ تمام چیزیں جو ہم نے زمین میں پیدا کی ہیں ان میں سے حلال اور طیب چیزوں کو کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہیں پر بھی فہرست نہیں دی ہوئی حلال چیزیں کیا کیا ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فلانی سبزی حلال ہے، فلانا پھل حلال ہے، فلانا گوشت یہ حلال ہے، فلانے قسم کا جو ڈرنکس ہیں وہ حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو لسٹ دی ہے وہ لسٹ دی ہے اس کے اپوزٹ. جو چیزیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف وہ بتا دی ہیں، اس کے باہر جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ حلال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا ٹیسٹ یہ ہے کہ پھر انسان ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال پیدا کی ہیں ان کو کھائے، اور ان میں سے جو طیب چیزیں ان کو کھائے. پہلے ان دونوں کا ڈفرینس انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنا یہ گناہ ہے. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام سمجھ لینا یہ بھی گناہ ہے. دونوں چیزیں ایکول ہیں. ہمیں کراہت کس چیز سے ہوگی؟ کوئی بندہ حرام کام کر رہا ہوگا. ہمیں اس چیز سے کراہت نہیں ہوگی کہ ایک انسان ایک حلال چیز کے اوپر حرام سمجھ کے بیٹھا ہو اور اس چیز سے اس نے بالکل پرہیز کیا ہو. ہمیں اس چیز سے کراہت نہیں ہوگی، ہمیں حرام چیز کے اوپر کراہت ہوگی کہ ہاں یہ حرام تھا اور یہ کھا رہا ہے. اور اسی طرح ہی ہم اسی بات کو قیاس کر سکتے ہیں باقی احکامات کے اوپر، صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر نہیں، باقی تمام احکامات کے اوپر. جو کرنے کے کام ہیں وہ نہ کرنا یہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو منع کیے ہوئے کام وہ کرنا یہ بھی نافرمانی ہے، اور یہ دونوں ایکول ویٹیج رکھتی ہیں. اب حلال اور طیب کا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑی تقسیم یہ ہے کہ ایک دائرہ ہے حرام کا، باقی جو دائرہ بچ جاتا ہے پیچھے وہ سارا کا سارا حلال ہے. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، مباح کا. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز پرمیسیبل ہے، اجازت ہے، بہت تلقین نہیں ہے اس کی طرف لیکن اجازت ضرور ہے اس چیز کی. اب اس دائرے کے اندر جو حلال کا دائرہ بہت بڑا آ جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں طیب چیزیں کھاؤ. طیب وہ چیز ہے جو، طیب کا ویسے مطلب ہوتا ہے پاک، لڑکوں کا بھی نام ہوتا ہے، لڑکیوں کا بھی نام رکھا ہوتا ہے. ایون مدینہ کو بھی مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، پاک شہر، جس میں کوئی ناپاکی، گندگی، کوئی ایسی چیز نہ ہو. کس سینس میں ناپاکی نہ ہو؟ فزیکل سینس میں بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں شرک سے پاک. تو حلال اور طیب کے اندر جو فرق تھا وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو چیزیں باقی بچ جاتی ہیں جو حلال میں اکاؤنٹ میں نہیں آتی ہیں، وہ تمام چیزیں حلال ہیں. ان میں سے طیب وہ چیزیں ہیں جو ویسے بھی حلال چیز تھی اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلط چیز شامل نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ انسان گوشت کھا رہا ہے، بکری کا گوشت کھا رہا ہے یا مرغی کا گوشت کھا رہا ہے یا پھل ہی کھا رہا ہے، چلیں گوشت نہیں بھی اگزامپل لیتے ہیں تو پھل کھا رہا ہے یا کوئی سبزی کھا رہا ہے بندہ، وہ تمام چیزیں اصلا حلال ہیں. لیکن اگر اس کا روزی کمانا جو تھا وہ حرام ذریعے سے تھا، تو چاہے وہ حلال چیز کھا رہا تھا یہ طیب نہیں ہے یہ چیز. اب اسی طرح ہی ایک شخص کوئی چیز کھا رہا تھا جو کہ اصلا حلال تھی لیکن کسی اور ذریعے سے وہ اب طیب نہیں رہی. وہ چوری کی چیزیں کھانا، ویسے تو مرغی حلال ہے، چوری کی مرغی کھا لی تو حرام ہو گئی بولی، किसी के घर पे आपने बगैर इजाज़त के आपने फल तोड़ के खा लिया, किसी और की सब्जी लगी हुई थी आपने उसको उतार लिया, उसको खा लिया आपने, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी फिर तैयब में नहीं आएंगी। फिर इसकी एक और अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि तैयब वो भी चीज़ है जो सेहत जिस्म इनके लिए कोई चीज़ जो अच्छी ना हो, मुज़िर हो। मिसाल के तौर पे आजकल के जो ड्रिंक्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ये वैसे तो हलाल है, हराम तो नहीं है, इसके अंदर कोई चीज़ डाली नहीं हुई। वैसे एक और बात ये भी ऐड कर दूँ कि ये जितने भी ड्रिंक्स होते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स बताए नहीं जाते हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ये सीक्रेट रखे जाते हैं। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं इसके अंदर कोई चीज़ नोन नहीं है कि हराम है, तो ये हलाल है। लेकिन क्या ये तैयब है कि नहीं है? ये चीज़ें तैयब नहीं है क्योंकि इन चीज़ों का आपके जिस्म के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आता, बल्कि इनको पीने का नेगेटिव इफेक्ट होगा आपकी बॉडी के ऊपर विद टाइम, इन चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट होगा। जो इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चिप्स हो गए या जिस तरह के फुलके टाइप हो गए या स्लांटी और इस तरह के जितने भी आजकल को ब्रांड निकले हुए हैं खाने पीने की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये फोकर किस्म का खाना है, इनके अंदर तो कोई एनर्जी नहीं होती इन चीज़ों के अंदर, ये भी तैयब में नहीं आएगी चीज़ें। वो चीज़ें जो आपकी सेहत आपकी आपकी बॉडी को हेल्थ नहीं दे रही हैं बल्कि वो नुकसान दे सकती हैं। अब तैयब पाक होता है तो पाक का ऑपोजिट क्या होगा खाने पीने के सेंस में?
नापाक।
नापाक, या नापाक उस तरह हम आप कह लें इंग्लिश में क्या कह देंगे, अनहाइजीनिक फूड, सेहत के लिए जो अच्छा खाना नहीं है, वो तमाम चीज़ें इस दायरे के अंदर आ जाएंगी कि वो चीज़ जो हलाल भी हो, असलन भी हलाल हो, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो गई हो जो उसकी हलाल होने में कोई कमी पैदा हो जाए। एक वो एस्पेक्ट हो गया, जैसे हम बताते हैं हलाल रोज़ी से कमाना, हलाल जरिए से उसको खाना, वो तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फहरिस्त मेंशन की हुई है। वो जब आएंगी सूरह बकरा ही के अंदर, ये भी हम आयात पढ़ रहे थे, सिर्फ चंद आयात के बाद ही हलाल और तैयब खानों का दोबारा जिक्र आएगा, अल्लाह ताला लिस्ट मेंशन करेंगे, तब एग्जैक्टली उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अभी एक जेनेरिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आप लोगों के आगे। तो तैयब के अंदर जैसे बता दिया कि ये भी शामिल है कि वो चीज़ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो, सेहतमंद हो आपके लिए, आपके जिस्म के ऊपर उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। अब ये करने के बाद अल्लाह ताला का हुक्म के दर्जे के अंदर है कि ये चीज़ खाओ, ये हलाल चीज़ें खाओ, तैयब चीज़ें खाओ। ये नहीं कहा कि तुम चाहो तो खा सकते हो, खाओ हुक्म के दर्जे के अंदर है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तत्तबेउ खुतवात शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अक्सर आयात के अंदर इस तरह मेंशन किया हुआ है, अपने एक हुक्म के साथ शैतान का जिक्र किया हुआ है और शैतान के कदमों की पैरवी की जिक्र किया हुआ है। क्योंकि शैतान जो है वो नंबर वन बात आप लोगों को खैर पहले भी किसी लेक्चर में बात बयान की होगी इस तरह की, शैतान जो है वो हर शख्स का अलहदा है, ऐसा नहीं है कि एक कॉमन वन बिग शैतान है और बस उसी ने हरे को गुमराह कर है। हर शख्स के साथ अल्लाह ताला ने एक शैतान मुकर्रर किया हुआ है, सही मुस्लिम की हदीस है, और इस शैतान को करीन बोलते हैं। मेरे साथ भी एक शैतान है जो मेरे उसका ज़िंदगी का मकसद यह है कि उसने मुझे गुमराह करना है। जो आपके साथ शैतान लगा होगा उसका ज़िंदगी का मकसद यह है कि उसने आपको गुमराह करना है, भटकाना है। और मेरा शैतान जो है वो मेरे नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ है, आपका शैतान जो होगा वो आपके नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ होगा, आपकी स्ट्रेंथ पता होगी उसे, अगर आपके अंदर कोई विल पावर है तो वो उसको पता होगा, आपके अंदर जो कमज़ोरी है उसको वो भी पता होगा। अगर बिलफर्ज आप पिघल जाते हैं कि आपकी कोई खुशामद करता है आपके सामने तो उसको ये पता होगा। अगर आपके अंदर माल दौलत की जो है वो लालच है, बाय नेचर आप सेल्फिश हैं, या कोई और किस्म के अट्रैक्शंस आपके अंदर हैं जिनकी तरफ माइल होती हैं, आपकी तबीयत जल्दी माइल होती है, जो आपकी वीकनेसेस में शामिल होती हैं, या आपके अंदर वीकनेस ऑफ कैरेक्टर है, आपको जैसे ही कोई मुसीबत वाला सिनेरियो बनता है आप एकदम से झूठ के ऊपर उतर आते हैं, आप झूठ बोल देते हैं, झूठे बहाने मार लेते हैं, ये तमाम चीज़ों से आगाह है आपका शैतान जो आपको बहकाएगा, जो आपका करीन है, आपका साथी है। करीन को इंग्लिश में कंपेनियन बोलते हैं। तो आपका जो कंपेनियन है वो आपके इस चीज़ों से, आपकी किन कमजोरी से वाकिफ है। जब तक आप जिंदगी गुजार रहे हैं गफलत की जिंदगी, चाहे जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन आप गुजार रहे हैं गफलत की जिंदगी, तो उसको कोई कंसर्न नहीं है उस चीज़ से। मिसाल के तौर पे आपके पेपर्स हो रहे हैं आजकल, आपके कोई पढ़ाई का इशू चल रहा था, कोई पेपर आपने पब्लिश करवाना था अपना, या कोई और असाइनमेंट मिली हुई थी आपको, आप रातों को बैठ के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपको नहीं बहकाएगा कि छोड़ो क्या ज़रूरत है पढ़ने की, या ख्याल इस तरह का डालेगा, वो आपको नहीं बहकाएगा। وہ آپ کا نفس، اگر آپ کے اپنے خود آپ کو نیند آ رہی ہے یا آپ خود تھک گئے ہیں یا آپ کا اپنا دل نہیں مائل ہو رہا، وہ ایک الگ بات ہے، شیطان نہیں آپ کو گمراہ کرے گا، شیطان کو اس کا کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایگزام کے اندر رزلٹ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، اس کی کنسرن اس چیز میں نہیں ہے، اس کو اس چیز سے کوئی حسد ہی لگے کہ آپ کی کمپنی کے اندر آپ امپلائی آف دی منتھ تو نہیں کہیں آنے والے، تو اگر وہ آپ آنے والے ہیں تو آپ کو بہکائے یا آپ کو کوئی سستی ڈالے تاکہ آپ سے کوئی غلطی ہو، نہیں نہیں اس طرح بالکل نہیں ہونے والا، شیطان کو اس سے کنسرن ہے ہی نہیں، اس کو آپ کے کیریئر سے کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ نے کہ پلاٹ میں پیسے ڈالے ہوئے تھے تو وہ پلاٹ کی الاٹمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، کیا معاملہ ہے آپ کو غلط قسم کا وہ وسوسے آئیں، وہ اس چیزوں میں بالکل کنسرن نہیں ہے، وہ اس کا سارا کنسرن صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے صراط مستقیم پہ نہ چل رہے ہوں، صراط مستقیم کے علاوہ آپ جس مرضی راستے پہ چل رہے ہیں، چاہے پورے دن گلی محلے کے اندر پھیر پھیر کے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یا پورے دن آپ بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، یا آپ دفتر کے اندر یا آفس کے اندر یا جہاں پہ بھی آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہیں اپنا، یا آپ وہاں پہ بہت لگن سے کام کر رہے ہیں، اس کو ان چیزوں میں کنسرن نہیں ہے، وہ آپ چیزوں کو کبھی وسوسہ نہیں دے گا، ان چیزوں کے اندر کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا پریشان نہیں کرے گا وہ، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق صراط مستقیم سے نہیں ہے. جب آپ نے اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال لی اور آپ کو احساس ہوا کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کہا کہ توبہ کی، آپ نے اب کوشش کرنی شروع کی کہ آپ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اب آپ نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، ٹرائی کرنے کی کوشش کیا، دس از دا اونلی پاتھ جس کے اوپر اس نے آپ کو روکنا تھا، اب وہ حائل ہوگا بیچ میں اور وہ آپ کو وسوسے دے گا، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اب اس کے وسوسے آپ کے ایمان، آپ کے عمل، آپ کے سراؤنڈنگز، آپ کے انوائرمنٹ، آپ کی نیچر، آپ کے شکل، ان تمام چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگزامپل سے ساری باتیں سمجھ لگیں گی. بالفرض یہ کہ آپ میچ دیکھ رہے تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کی آواز آپ کو آ گئی، یا کوئی اور پسند کا ڈرامہ لگا ہوا تھا، آپ کو اذان کی آواز آ گئی اور آپ کے دل کے اندر بھی خیال ایک دم سے پیدا ہوا کہ نماز کا ٹائم آ گیا، چلو اٹھو نماز پڑھو. اگر آپ نمازی ہیں تو کبھی بھی شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ آج نماز نہیں پڑھنی میں نے، کبھی یہ وسوسہ نہیں ڈالے گا، وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ اچھا ابھی بس ایک سین اور دیکھ لوں گا، اچھا یہ بس دو بالز اور بس اس کے اندر ہو جائیں، اچھا چلو دیکھ لو اوور ختم ہو گیا تھا، دیکھ لو نیکسٹ اوور کس کو مل رہا ہے، پھر میں اٹھتا ہوں نماز کے لیے. وہ آپ کو ڈیلے کروائے گا، آپ کو ڈیلے کروائے گا کہ آپ کا وہ ٹائم جو پیک ٹائم تھا نا آپ کا، وہ آپ کے ساتھ سمہاؤ مس ہو جائے، وہ آپ کو ڈیلے کروائے گا اس طرح کر کے. آگے پیچھے آپ کے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں جو آپ کو امپورٹنٹ تھیں آپ بھولے ہوئے تھے، آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا تھا، آپ کو آپ جیسی نماز میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کریں گے، ساتھ ہی خیالات کی بھرمار ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو دائیں بائیں کی تمام باتیں یاد آنی شروع ہو جائیں گی، میں نے یہ بھی کرنا تھا، میں نے اس طرح کرنا تھا، اس طرح کرنا تھا، فار واٹ ریزن، تاکہ آپ کی توجہ نہ ہو. پہلے یہ تھا کہ آپ کھڑے نہ ہو اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھنے کے لیے، وہ ٹائم ڈیلے ہو جائے، آپ کی جماعت مس ہو جائے سماؤ، اور بعد میں کہیں لیٹ کر کے آپ پڑھ لیں، یا شاید وہ بھی بھول جائیں آپ غفلت کے اندر آ کے، آپ وہ بھی نہ نماز پڑھیں تب کی نماز ہی قضا ہو جائے، وہ یہ اس کے اٹیمپٹ تھے. بالفرض آپ کھڑے ہو ہی گئے نماز پڑھنے کے لیے، اب ہر طرح کے خیالات آ کے آپ کی نماز کی جو کوالٹی ہے نا وہ بالکل ہی گئی گزری کوالٹی ہو اس کی، جس میں نہ آپ کا دھیان تھا، نہ آپ کا خشوع تھا، نہ آپ کا خضوع تھا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر آپ کا، بس ایک کھوکھلی سی نماز پڑھ لی، ایک پریڈ سی ہو گئی تھی. وہ آپ کو اس طرح کے وسوسے دے گا، اس وقت آپ کو آئیڈیاز دے گا وہ ٹو تھنک اباؤٹ، کہ آپ کے تاکہ آپ کے تھنکنگ نماز سے ہٹے اور آپ کے اور چیزوں میں سوچنا شروع ہو جائیں. تو یہ ڈپینڈنگ آن ہر بندے کے اوپر، ہر بندے کی کمزوری نیچر کے مطابق وہ وسوسے دے گا، اور اس کے وسوسے ہوتے ہیں چال بازی کے، سلو سلو وسوسے ہوتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ کو وہ عمل سے روکے کہ یہ عمل نہیں کرنا تم نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں جا کے وہ آپ کو، اگر آپ عمل میں لگ گئے تھے، اب آپ کو اس عمل کے اندر وہ دکھاوا ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں نمازیں تو میں پڑھ رہا ہوں یا میں یہ نیک کام تو میں کر رہا ہوں، اب اس کو کس طرح سے دکھاوا اس کے اندر ایڈ اپ ہو کہیں سے، بھائی باقی لوگوں کو پتہ تو لگے نا میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں یا میری اتنی نیکی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی، کوئی کہیں سے تو اس کی پبلسٹی ہونی چاہیے. تو آپ کو وہ ایٹ لیسٹ، اگر آپ کو عمل سے نہیں روک سکا تو آپ کی نیت میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ تاکہ آپ لوگ اور لوگوں کے آگے ذکر کریں اپنے نیکیوں کا، تو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہ ہو تو کم از کم وہ نیت گڑبڑ ہو گئی، وہ خالص اللہ کے لیے تھی نہیں، اب نیت رہی तो आपके कम से कम वो सवाब या तो बिल्कुल ही ज़ाया हो जाए या उसके सवाब में कोई ना कोई कमी आ जाए। और ये भी हो सकता है, ये एक लेक्चर था डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तज़ा का, जब वो मदीना से फिर पहला आखिर पाकिस्तान आने लगे थे, तो उनके वहाँ पे एक सीनियर कोलीग थे मदीना यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था वहाँ पे, प्रोफेसर रहे हुए थे। तो जब वहाँ से उन्होंने आना था पाकिस्तान, तो उन्होंने अपने कोलीग का जिक्र किया कि मेरे सीनियर कोलीग ने मुझे ये बात बताई थी कि अभी तो तुम अल्लाह के दीन के रास्ते पे चलोगे, मुश्किल आएंगी, रुकावटें आएंगी, और जो कुछ भी होगा तुमने लेके चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना है। बिल आखिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब शैतान तुम्हें गुमराह नहीं कर पा रहा होगा ना, तो तुम्हें वो फिर रियाकारी का खौफ दिलाएगा। अभी मैं एग्जांपल क्या दे रहा था, अभी इनिशियल लेवल के ऊपर वो आपके अंदर वो इस चीज़ का एहसास डालेगा कि मैं किसी और के आगे शो तो करूँ ना अपने अमल को, किसी के आगे शो तो करूँ। लेकिन एक ख़ास लेवल के बाद जाके जब बंदा इन बहकावों में भी नहीं आता, तो वो उल्टा सही नसीहत के ऊपर आपके अमल से रोकेगा आपको। कि बिलफर्ज एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, कोई बंदा मेहमान आ गया या कोई और आ गया, उसके जेहन में ख्याल डालेगा कि अब बस अब और नमाज ना पढ़ना, ये ना हो कि वो समझे कि तुम कितने नेक बंदे बने हुए हो, इसलिए वो नेकी ना हो इस तरह करके। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो अक्सर जो सूफिया जो थे उनके अंदर आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स अक्सर मिलेंगी कि वो बहुत सारे अमल जो थे वो रियाकारी के खौफ की वजह से नहीं किया करते थे। तो उनमें से एक ये चीज़ भी होगी कि रियाकारी ना आए तो वो अमल से रोक देगा शैतान आपको। इनएविटेबली हासिल क्या हुआ दोनों सूरतों में, पहले क्या था कि आप अमल कर रहे थे उसके अंदर आपको वो डिले करवाएगा, डिले से नहीं रोक सका तो आपके अंदर रियाकारी पैदा करेगा, रियाकारी जो से नहीं रोक सका आपको वो कि रियाकारी आप करते, फिर रियाकारी का खौफ दिलाएगा कि अमल किसी तरह से तो रुके इस बंदे का अमल। तो ये शैतान की मुख्तलिफ किस्म के हरबे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के अटैम्प्ट हैं कि वो किस तरह इंसान को वो बहका सकता है, रोक सकता है। अल्लाह ताला इस आयत को कंक्लूड कर रहे हैं, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसके अंदर कोई अल्लाह ताला कह रहे हैं छुपी बात नहीं है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, मैं तुम्हें वजाहत के साथ कुरान के अंदर बता रहा हूँ। इन्नमा बेशक यकीनन या मुरकुम वो तुम्हें हुक्म देगा इस चीज़ का, बेसुए वल फाहशाए, गुनाह का और फाहशी का, बदकारी का, वल्गैरिटी का, इन तमाम चीज़ों का तुम्हें वो हुक्म देगा। ये अल्लाह ताला है उसकी चालों में से एक चाल बयान कर रहे हैं कि उसकी एक चाल ये भी होगी कि वो तुम्हें गुनाह का हुक्म देगा और वो तुम्हें बदकारी का या फांसी का हुक्म देगा। अब शैतान का जो हुक्म है, अमर का लफ्ज़ आ रहा है, या मुरुकुम तुम्हें हुक्म देगा, वो उसके हुक्म से मुराद ये है वसवसे, ख्याल पैदा करेगा तुम्हारे दिल के अंदर इस चीज़ के। वَأَنْتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, और तुम्हें वो बातें कहलवाएगा तुमसे अल्लाह के बारे में जिसके बारे में किसी किस्म का तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था, तुम गलत बातें अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना शुरू हो जाओगे। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि वो फाहशी का हुक्म देगा और गुनाह का हुक्म देगा तुम्हें, और साथ पहले कह दिया कि उसके कदमों की पैरवी से बचना। एक मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हुए हैं जोजी, इमाम जोजी, उनकी एक किताब है तलबीस इबलीस, इबलीस की चालबाजियाँ, इबलीस के हरबे, उसके अंदर उन्होंने एक राहिब का जिक्र किया है, बनी इसराइल की कौमों में से जो वक्त गुजरा हुआ था पहली, उसके अंदर एक राहिब गुजरा हुआ है, उसका उन्होंने एक किस्सा वाक्या बयान किया है। और राहिब का क्या मामला होया करता था कि राहिब वो होते थे जो दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ हो के, शादी नहीं करनी हमने, हमने कोई जॉब नहीं करनी, हमारा कोई प्रोफेशन नहीं होगा, हमने मालो दौलत जमा नहीं करना, बिल्कुल हमने एक आजी की ज़िंदगी गुजारनी है और बिल्कुल हमने अल्लाह ताला के साथ लाओ लगाना है। वैसे तो कुरान के अंदर इसका भी अल्लाह ताला ने एक जगह के ऊपर मजम्मत की है कि ये वो हुक्म नहीं था जो हमने आपको दिया था, इन लोगों को हमने कोई हुक्म नहीं दिया था ये वाला कि ये रहबानियत अख्तियार करेंगे, तो वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद अब वो जो भी कर रहे थे वो बिद्दत कह लें से, जो मर्जी कह लें हमें से, लेकिन वो कर किस जज्बे से रहे थे, नेकी के जज्बे से कर रहे थे ये काम। तो एक राहिब का किस्सा मिलता है कि एक बस्ती के अंदर वो रहता था जहाँ पे गुनाह बहुत आम हो चुका था, वहाँ पे कुछ लोग थे जिनकी जवान बहन थी, ताजर लोग थे वो, और उनको किसी तजारत के घर से जाना था शहर से बाहर, और उनको ये फिक्र लग गई थी कि हम अपनी बहन को कहाँ छोड़ के जाएँ, सबको जाना था। और इसकी एक रवायत के अंदर ये आता है कि उनको जहाद की गर्ज से कहीं जाना था, कि कॉल एक ऐसी आ गई थी मैदान के अंदर कि जहाद की ज़रूरत है तो वॉलंटियर्स पेश हो, पर इन दोनों में से कोई भी बात हो, एनीवे बात यह है कि उन लोगों को जाना पड़ रहा था शहर से, और उनको ये फिक्र लगी कि हम अपनी बहन को कहाँ छोड़ के जाए, कोई शहर के अंदर ऐसा बंदा नहीं है जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। उन्होंने आके इस राहिब से बात की कि इस तरह है कि अगर हम अपनी बहन को तुम्हारे पास छोड़ दें वो तुम्हारे घर का ख्याल भी कर रखेगी, सफाई वगैरह भी करेगी घर की, खाना वगैरह भी देगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी वो। उसने बिल्कुल इनकार कर दिया, कतर नहीं, जो कि एक रिस्पॉन्स होना चाहिए था किसी भी अल्लाह ताला के नेक बंदे का, कि नहीं इस तरह मैं किसी गैर महरम को तो नहीं अपने पास रख सकता इस तरह। पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमारे पास कोई चारा नहीं और हम मजबूर हैं, और कोई सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा हमें कि हम किसके पास इसको छोड़ के जाएंगे, कौन इसकी देखभाल करेगा, और हमें तो जाना है लंबे वक्त के लिए। पुश करते रहे बिलाखिर वो मान गया कि चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। जब वो चले गए तो राहिब ने क्या किया कि उसको उसके घर ही रखते हुए, वो अपने घर में रही, ये उसके घर के पास क्रॉस जो है वहाँ पे होता था, दिन में एक दफ़ा बस जाके खैर खैरियत मालूम करने के लिए, या आप कह लें कि जो खाने पीने की चीज़ें या सौदा ला के देना होता था, और उसने वो खाना दे दिया बना के, तो इसने वो पिक कर लिया। तो इस तरह उनको कुछ वक्त गुजरता रहा। अब शैतान इसके पास आया, अब ये कोई एक अलग नेक बंदा था, जाहिर बात है जिसने ऐसी ज़िंदगी अख्तियार की थी अल्लाह ताला का नेक बंदा ही था वो। शैतान ने इसको वसवसा ये देना शुरू किया कि तुम जाते हो उसके पास, वो बेचारी अकेली है, उसके भाई तो है नहीं, कितनी तन्हाई फील करती होगी वो, तो कभी कोई अच्छी तरीके से बात ही कर लिया करो उसके साथ। तो इस तरह करके वसवसा उसके जहन में आया ये वाला, उसने नेक्स्ट टाइम से आज तक ये करना शुरू कर दिया कि जब वो फिर चीज़ें देता था उसको या उससे कुछ चीज़ लेता था, खाने की चीज़ें या सौदे वगैरह, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात करनी शुरू कर दी। शैतान ने उसके जहन के अंदर भी इसी किस्म का ख्याल डालना शुरू किया कि देखो कौन यहाँ पे आजकल इस शहर में कौन तुम्हारा देखभाल कर रहा है, कोई पूछ रहा है तुम्हारा, ये देखो ये आके तुम्हारा पता कर रहा है कि नहीं कर रहा, मालूम कर रहा है तुम्हारा हाल चाल ठीक है कि नहीं है सब कुछ, तो तुम भी कोई अच्छे तरीके से बात कर लिया करो, इतना उखड़ने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से इससे बात कर लिया करो। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके उन दोनों के बीच में वो जो है फॉर्मेलिटी थी वो ब्रेक हुई, और आहिस्ता आहिस्ता करके बातचीत होनी शुरू हुई। जब बातचीत होनी शुरू हो गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके शैतान ने और वसवसा देना शुरू किया कि और टाइम स्पेंड कर लिया करो, और स्पेंड कर लिया करो, और जब एक दफ़ा रास्ता खुल जाए तो फिर वैसे ही खुद ही दिल मायल होना शुरू हो गया एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के ख्यालात आने शुरू हो गए, एक दूसरे के बातें बाद में रिकॉल होती रही। तो इस तरह शैतान ने इनको आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज अप करना शुरू कर दिया कि फिर बाद में घर भी चला जाया करता था, अंदर चला जाया करता घर के, उसमें भी वक्त गुजारना शुरू कर दिया, टाइम लगता रहा लगता रहा। ये चीज़ बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती, ये वाक़या लंबा है, ये सारा जो वाक़या है ना ये मेरी कॉपी में इन पेजेस में लिखा हुआ है। तो इस तरह बात गुजरता रहा कि बिल आखिर वो उनकी बहुत ज़्यादा ओपननेस आ गई, बहुत ज़्यादा ओपननेस आते गई आते गई आते गई, यहाँ तक कि फिर वो कुछ इस तरह आना शुरू हो गया कि रात अकेली है, अंधेरी रात होगी, अकेला है वक्त, तो बेहतर ये है कि तुम इधर नाइट स्टे कर लो तो उसको डर नहीं लगेगा या कोई और मसला वगैरह नहीं होगा। इस तरह शैतान ने वो रास्ता बिल्कुल जब ओपन कर दिया तो ज़ाहिर बात है वो भी दोनों फ्लो में आना शुरू हो गए। फिर आखिर ये हुआ कि दोनों फिज़िकल होना शुरू हो गए, और फिजिकल होते होते इतना मामला बढ़ता गया कि वो फिर जना भी करते रहे। जब ये अमल हो गया, लेवल यहाँ तक पहुँच गया, और जब उसको एहसास हो गया कि ये लड़की जो है तो प्रेग्नेंट हो गई है, ये तो एक्सपेक्ट कर रही है, अब उसकी आंखें खुली, शैतान पीछे हटा, उसकी आंखें खुली कि ये हो क्या गया था, कि मैं क्या गुनाह कर बैठा हूँ, किस तरह का गुनाह कर बैठा हूँ। और उसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं आया, बल्कि उसके अंदर जो खौफ पैदा हुआ वो अपनी ईगो का, सोसाइटी के आगे मैं फेस किस तरह करूँगा, इसके भाई वापस आ गए तो वो क्या करेंगे, कि ये तो एक्सपेक्ट कर रही है प्रेग्नेंट है ये, भाई वापस आ जाएंगे वो क्या करेंगे, मेरा माशरे के अंदर एक स्टेटस है, लोग तो मुझे बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा वो, और ये तो बिल्कुल ही बने कि एक बदकार बंदा या बुरा बंदा हो वो जो मर्जी अमल कर रहा हो, मेरे ऊपर इस तरह की बात आ जाएगी तो क्या हाल होगा। इस तरह के वो फिर परेशानी और घबराहट में आना शुरू हो गया कि अब क्या होगा अब क्या होगा। इसी वक्त के दौरान फिर वलादत भी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब शैतान ने उसको फिर ये वसवसा दिया कि इसका कोई हल नहीं है सिवाय ये कि इस बच्चे को भी मार दो, इस लड़की को भी मार दो, क्योंकि अगर बच्चे को मार दिया इस लड़की ने चुप रहना, ये तो सारी बातें खोल के बताएगी कि तुम्हारे भाइयों को कि इसने यही हरकत की थी, और बिलाखिर उस बच्चे को भी मार दिया। सो द ओनली वे आउट इज़ कि बच्चे को भी मार दो, लड़की को भी मार दो, और इन दोनों को दफन कर दो पीछे, जब भाई आएंगे तो कुछ एक्सक्यूज़ बन जाएगा। पहले आखिर जब वो भाई आए, चाहे चरत से आए थे या चाहे जहाज से आए थे, जो मर्जी वर्जन हम एक्सेप्ट कर लें, जब वो वापस आए, इस बंदे ने इस तरह बताया कि वो बीमार पड़ गई थी और मैंने तो बहुत ख्याल रखने की कोशिश की लेकिन वो इस तरह मर गई, फौत हो गई, तो ये उसके पीछे मैंने कब्र बना दिया। तो भाई जो थे, क्योंकि वो बंदा इतना नेक मशहूर था, इतना अच्छा बंदा था वो, सबके सब भाइयों ने बात उसकी बिल्कुल यकीन किया उसकी बात का, बहुत गम किया, बहुत दुख किया, रोए, लेकिन फिर बिलाकर चले गए वहाँ से, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये अल्लाह ताला की मशीयत इसी में ही थी। अब रात को जब वो सोए, उन तीनों को ख्वाब में एक ही ख्वाब दिखाया शैतान ने, और ख्वाब क्या दिखाया कि जो हुआ था, जो हकीकत में हुई थी, वो सारा ख्वाब दिखा दिया कि इस तरह वो फ्रैंक होना शुरू हुआ था उसके साथ, और इस तरह वो फिजिकल भी होना शुरू हो गया था, इस तरह डिलीवरी भी हो गई थी, और इस तरह कत्ल भी कर दिया, और वहाँ कत्ल किया है, तो सुबह जाके उसकी कब्र खोद के देखो। जब ये उठे, एक दूसरे से जिक्र किया, मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब दिया, इसने कहा मैंने भी ये ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब देखा है। चले उसके पास गए, उसके पास गए और हथियार असला लेके गए, वो वहाँ पे पहुँचे उसके पास, उसने कस्में खानी शुरू कर दी, हर किस्म की कसम खा के कहा कि इस तरह कुछ हुआ ही नहीं, मामले कुछ नहीं हुआ इस तरह का। वो गए कब्र खोदनी शुरू हो गए, कब्र खोदी तो इसने देखा कि जो भी बॉडी स्केलेटन जो भी पड़ा होगा उसके अंदर, एक बच्चे का भी मिल गया उन्हें और उस लड़की का भी मिल गया उन्हें बॉडी। अब वो लौटे उसकी तरफ, भागे वापस घर की तरफ के इसको मारो कत्ल करो ऐसे। अब ये घबराहट में था इस तरह के, इसके सामने जो है ना शैतान आ गया एक इंसानी रूप के अंदर और आके कह दिया कि तुम बस मुझे एक सजदा अगर इस वक्त कर दो ना तो मैं तुम्हें बचा लूंगा इनसे, बेफिक्र हो जाओ मैं तुम्हें इनसे बचा लूंगा। उसको कुछ समझ नहीं लगी कि वो उसके सामने सजदे में जैसे ही गिरा उसी वक्त उसकी उन्होंने भाइयों ने आके गर्दन उड़ा दी। तो ये एक एक मिसाल है जो इमाम जौजी ने अपने किताब तलबीस इब्लीस में खुतवात शैतान को एक्सप्लेन करने के लिए मेंशन की है। ये एक वाकया कि शैतान ने किस तरह एक बंदा जो बिल्कुल दुनियादारी से हट के एक अलग सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत बंदगी में वक्त गुजारे जा, सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत में वक्त गुजारे जा रहा था, उसको किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिसलाना शुरू किया कि उसको एक नामहरम के साथ वक्त गुजारने, फिजिकल होने तक का मौका मिला। फिजिकल होने में जिना की बात नहीं मैं अभी कर रहा, सिर्फ फिजिकल होने की मैं बात बता रहा हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम्हारे सर के अंदर लोहे की मीखें ठोक दी जाएँ, वो जो तुम्हें दर्द और अजाब होगा ये उससे कई गुना बेहतर है कि तुम्हारा हाथ किसी नामहरम को टच करें। जिना की बात नहीं हो रही, ना महरम को टच करें, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारे सर में मेख ठोक दी जाए बजाय कि तुम किसी ना महरम को छुओ। तो एक दफ़ा क्या कई दफ़ा छूने का इतफाक उसको मौका मिला, और फिर उसके अलावा एक जिना कर बैठा, फिर उसके बाद कत्ल किया, एक मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया, लड़की को भी कत्ल कर दिया, फिर झूठ बोला भाइयों के आगे आके, झूठा बहाना किया, गैर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया, अल्लाह का खौफ रहा ही नहीं उसके अंदर। फिर उसके बाद जब भाई दोबारा आए थे कन्फर्म करने के लिए झूठी कस्में खाई, फिर जब बिल आखिर आखिरी क्या हो गया था कि गैर अल्लाह के आगे सजदा भी करवा दिया। तो उस मकाम से उठा के कहाँ नीचे ज़मीन पे मार डाला, और पता नहीं अब वो जब मरा होगा ज़रा है, जब भी मरा होगा वो, तो पता नहीं तब से लेकर अब तक क्या अंजाम पाया होगा उसने अल्लाह ताला के यहाँ। इस वाक़े से एक और एडिशनल बात मैं ये भी बता दूँ, कभी भी अपने नेकी का या कभी भी अपने किसी भी नेकी का या अपने तकवा का या किसी चीज़ के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि बाकी लोग हैं गुनाहगार होंगे, बाकी वो हैं वैसे, मैं तो ऐसा नहीं हूँ तो इसलिए मैं आई एम रिलायबल, कभी अपने ऊपर इस तरह का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी शैतान के वसवसों में एक वसवसा ही होगा। हमें क्या पता कि हमारे क्या हैसियत है अल्लाह ताला के नज़दीक, हमें क्या पता कि हमारे ऊपर ईमान ने ये चीज़ें जो है हमारे अंदर कितनी ईमान की आग भरी हुई, और या गिलकर कितना ही ठंडा मामला है, बिल्कुल ही ठंड पड़ी हुई, और हम सिर्फ समझ के बैठे हैं कि हमारे अंदर बहुत हम बड़े अल्लाह वाले हैं, या ये कि ठीक है मैं वही समझ तो कुछ नहीं करता लेकिन कभी ऐसा गुनाह नहीं किया, या कभी ऐसा मौका आया तो मैं तो बहुत इसके ऊपर फर्म हूँ, कतई इस किस्म की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला से बल्कि पनाह मांगते रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों से। तो शैतान तुम्हें हुक्म देगा गुनाह का और फहाशी का, व अन तकूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि तुम अल्लाह के बारे में वो बातें कहो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं, जिनके बारे में इल्म। ये तुम्हारे दीन के अंदर एक बहुत बड़ी गुमराही का मामला है। आप जितने भी फ़िरके उठा के देख लेंगे ना, आप उनसे किसी बात की दलील मांगेंगे ना, वो उन्होंने दीन का पूरा एक स्टेज बनाया होगा, उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया होगा दीन का, एक अपने जेहन के अंदर कि नहीं नहीं ये हराम है, ये फलाना है, ये तो गुनाह है, ये तो गुस्ताखी है, ये फलाना है, ये इस तरह है, ये बिद्दत है, ये वो है, विदाउट एनी रेफरेंस उन्हें ये बातों का, वो उन्होंने अपने दीन का अपनी मर्जी की एक शरीयत का स्ट्रक्चर बनाया होगा, खुद ही अपनी मर्जी से हलाल हराम चीज़ें डिसाइड की हुई होंगी और उनको मंसूब कर रहे होंगे कि ये चीज़ इस्लाम का पार्ट है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इस्लाम। तो ये शैतानी वसवसा है ये वाला कि तुम बग़ैर दलील के अल्लाह ताला के ऊपर चीज़ें मंसूब कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है सही मुस्लिम के अंदर, जो पहला बाब है, जो मुकदमा इमाम मुस्लिम ने जो मुकदमा बनाया था उसके अंदर हदीसें मेंशन की हुई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरह एक दूसरे के बारे में झूठ बोल लेते हो, ऑल्दो झूठ वैसे ही गुनाह है, तमाम गुनाहों की जड़ है वो, लेकिन झूठ से बढ़ के ये कि अगर आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जिस तरह दूसरों के बारे में एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हो, तो इस तरह कभी ख्याल भी मत करना कि मेरे बारे में कोई झूठी बात बयान कर दो। जिसने मेरे बारे में कोई झूठी बात बयान की उसका ठिकाना जहन्नम है। रसूल सल्लम से मुतलक कोई बात ऐसी आपको SMS फॉरवर्ड हो गया, आपको कुछ नहीं पता कि ये हदीस का रेफरेंस है कि नहीं, और नीचे रेफरेंस लिखा भी हुआ है तिर्मिज़ी हदीस नंबर फलाना, आपको क्या पता कि वो, तो मैं जो मर्ज़ी टाइप कर दूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से एक SMS बना दूँ और नीचे से रेफरेंस जो मर्ज़ी लिख दूँ हदीस नंबर 3164, और पता नहीं हदीस में वो था भी कि नहीं था। तो उन चीज़ों को आप लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, रसूल सल्लम ने फरमाया है अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना है इन चीज़ों के अंदर। रसूल सल्लम ने फरमाया है बंदे के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दें। रसूल सल्लम कह रहे हैं बग़ैर तहकीक किए अगर आपने सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दी तो ये आपका झूठा होने के लिए काफ़ी है, इसका मतलब आप भी झूठे इंसान हैं। तो रसूल सल्लम के बारे में इतना मोहतात कि आप सल्लम कह रहे हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है। अब सोचें कि रसूल सल्लम के जो अल्लाह हैं उनके ऊपर अगर कोई बंदा झूठ बोले, उनके बारे में झूठी बात हो, तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए, फिर वो किस तरह की सज़ा होगी। फिर अब पिछली बात से लिंक करते हुए इन दोनों आयात को बात हो रही थी, स्टार्ट हुआ था कि हलाल और तैयब चीज़ें खाओ। अब इसके अंदर अगर कोई गड़बड़ की कि हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दिया ये वो, और इसको पार्ट ऑफ रिलीजन बना लिया, तो ये भी इसी तरह ही है कि एज तुमने अल्लाह के साथ कोई बात मनसूब कर ली थी जो दीन था नहीं और तुमने उसको बयान कर लिया। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया है हातु बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिकीन, तुम लोग अगर अपने दावों में सच्चे हो तो दलील पेश करो, बातें मत करो सिर्फ आगे, दलील पेश करो। यू हैव गॉट एविडेंस, फिर बात की जाएगी, लेकिन कोई आवाज एविडेंस नहीं है तो बस ये तो कि बातें मत करो। फिर अब अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला इसको किस तरह लिंक कर रहे हैं, व इज़ा की लला हम, और उन लोगों के लिए जब कहा जाता है इत्तबेउ मा अंज़लल्लाहु, कि पैरवी करो उस चीज़ की जो अल्लाह ने नाजिल किया है। ये बातें पीछे की हो गई सारी अल्लाह ताला के बारे में, अब कोई तुमने झूठी बात नहीं करनी, किसी किस्म की बात अपनी तरह से नहीं बयान करनी। और अब जब उनसे कहा जाता है कि इत्तबेउ मा अंज़लल्लाहु, जो कोई नाजिल किया अल्लाह ताला ने, अब इसकी पैरवी करो, फॉलो इट। अब जब सारे दलील उनके पास ख़त्म हो गए, सब बातें कट गई, अब कोई जवाब नहीं बचा उनके पास, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अब आखिरी जवाब क्या दिया करेंगे, जिन्होंने अमल नहीं करना वो आखिरी जवाब क्या दिया करेंगे। कालू, वो कहेंगे बल न तबे ऊ मा अल्फई न अलैही आबाअना, हम तो बल्कि सिर्फ वही करेंगे जो इस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया था। ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा कल्चर है, हमारे यहाँ रवायत ही चली आ रही है, हमारे ख़ानदान का ये तरीका इस तरह चला रहा है, हमारे बड़े इस तरह करते आ रहे थे, वो कोई नट्स थे, बेवकूफ़ थे वो लोग जो इस तरह करते आ रहे थे, वो तुम ज़्यादा समझते हो, हमारे आबाओ अजदाद के बारे में तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये उन लोगों का तरीका होगा जो पैरवी नहीं करेंगे ना, तो उनके पास लास्ट एक्सक्यूज़ क्या बचेगा, कल्चर है हमारा, हमारी तहजीब है, सकाफत है हमारी, हेरिटेज है हमारा, ये हमने अपने आबाओ अजदाद से इस तरह सीखा, हमने अपने आबाओ अजदाद को इस तरह ही पाया था, नस्ल दर नस्ल हम इस तरह करते आ रहे हैं। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं अवलौ काना आबाहुम ला याकलून शैयन वला यहतदून, हालांकि अगर हों उनके आबाओ अजदाद, इसका चांस एग्जिस्ट करता है बिल्कुल कि उनके आबाओ अजदाद बेशक अगर हों ना समझ रखते हों किसी चीज़ की और ना ही वो हदायत के ऊपर हों, फिर भी अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते रहेंगे, फिर भी अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला की उस बात के ऊपर दलील है कि आबाओ अजदाद का होना ये कोई एविडेंस तो नहीं है, कहीं अल्लाह ताला ये तो नहीं कहा कि आपके जो पेरेंट्स होंगे या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या जो आपकी नस्ल जो चली आ रही है ये हदायत याफ्ता नस्ल है। چاہے ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کے بارے میں، نہ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت کے اوپر ہو، وہ تب بھی انہی کی پیروی کرتے جائیں گے. اب آیت کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ہمارے کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ان اسلامک چلی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو پھر بھی فالو کریں گے، کیونکہ آپ کے فیملی میں اس طرح کیا جاتا ہے، آپ کے فیملی کا رواج ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، اسلام کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر کے اور آگے اگر کچھ سمجھایا بھی جاتا ہے تو ابھی بھی یہی جواب سننے کو ملتا ہے. ہمارے جو آبا و اجداد تھے یا ہمارے تو فیملی اس طرح کرتی آ رہی ہے، ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے، وہ ہمارے فلانے جو تھے وہ تو اتنے نیک تھے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی جواب نہیں ہے کسی قسم کا. تو ایگزیکٹلی ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ کی، میری، ہم میں سے کسی کی فیملی کا، کلچر کا، ہیریٹیج کا، ان تمام چیزوں کو ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آبا و اجداد کی گارنٹی کہیں اللہ تعالیٰ نے دی. گارنٹی کس کی دی ہے؟ گارنٹی ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ، گارنٹی شخصاً کس کی گارنٹی ہے؟ انسانوں میں کس کی گارنٹی ہے؟ انبیاء کی گارنٹی ہے. انبیاء ہدایت کے اوپر تھے، اور انہی انبیاء میں سے جنہوں نے کسی اور کے بارے میں تصدیق دے دی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے بارے میں بتا دیا، خوشخبری دے دی کہ یہ جنتی ہیں، اور ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ بتا دیا. بس یہ جو چھوٹی سی لاٹ بنتی ہے، یہ جو گروپ بنتا ہے، اس کے علاوہ باقی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں کون ہدایت یافتہ تھا اور کون کس حال میں تھا. چاہے ہم جو مرضی سمجھتے رہیں، وہ شہید والی جو آیات تھی ان کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے ہم نے اس کو نشان حیدر دے دیا ہو، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، شہادت قبول ہی نہ ہو، اس کی درجہ پانا دور کی بات، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے شہادت کو. چانس ایگزسٹ کرتا ہے نا اس چیز کا؟ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. عین ممکن ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں سمجھا تھا کہ یہ نشان حیدر پایا اس نے، یہ قربانیاں دیں، اور واقعی اس نے حقیقت میں بھی قربانیاں وہی والی دی ہوں، اس کے دل کے اندر بھی اللہ ہی ہو، اس کا عمل بھی اللہ کی خاطر ہی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی اس کو سمجھا اور آخرت میں اندر بھی اس کو وہی مقام ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ وہ کون بندہ تھا، اتنے جو اور ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا مقام پا گیا. احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟
70.
حضرت حمزہ کے علاوہ باقی کسی کا نام پتہ ہے ہمیں؟ ہمیں کتنوں کا نام پتہ ہے باقیوں کا؟ تو ابھی پاکستان آرمی ان چیزوں کی بات نہیں میں کہہ رہا، ایون ہمیں صحابہ کے نام نہیں پتہ کہ وہ کون صحابی تھے آخر جو شہید ہوئے تھے. ہم ان کو بائی نیم نہیں جانتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا ان کا، تو پتہ نہیں کیا مقام پائے ہوگا اللہ تعالیٰ نے. تو اسی طرح یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہدایت کے اوپر کون ہے. آپ پوری زندگی سمجھتے رہے ایک بندے کو، بندہ ہدایت کے اوپر ہے، اور کیا پتہ کہ اس کے عمل اندر سے بالکل خالی اندھیرا ہو اس کے اندر. ہم جو مرضی کہتے رہے کہ بڑا جی ان کے چہرے پہ نور ہے، وہ یہ تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی. اب آگے نیکسٹ آیت 171، ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جو کفر پہ اڑے رہیں گے، نہیں کہنا مانیں گے، بات نہیں مانیں گے. پیچھے بات ہو رہی ہے حلال طیب چیزیں کھاؤ، شیطان کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کی پیروی کرو. اب ان تمام باتوں کے اوپر جو پھر بھی اڑا رہے گا کفر کے اوپر، نہیں بات مانے گا اپنی اس بات کے اوپر، وہ نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ نہیں کرے گا، اسلام اللہ تعالیٰ کے آگے قبول نہیں کرے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذین، ایسے شخص کی مثال ہے، ینعقو بما لا یسمعون الا دعاء ونداء. ایک ایسے شخص کسی ہے جو کسی کو پکار رہا ہو، کہ اپنے ریوڑ کو، جانوروں کو پکار رہا ہو، اور جو اس کا ریوڑ اور جو جانور ہے اس کے، وہ کچھ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سوائے یہ کہ ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی ندا تو آ رہی ہے، کوئی دعا تو آ رہی ہے، کوئی ہمیں بلا تو رہا ہے، لیکن بات کیا ہو رہی ہے کچھ نہیں پتا. بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ کیوں نہیں، پھر بھی لوگ کیوں نہیں ہدایت پکڑ رہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے. چلے ابھی کیا ہم آج کی اگزامپل نہیں لیتے، کیونکہ آج کل تو ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سمجھا رہے ہیں اور لوگوں کو، لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کتنے لوگ ہیں جو نہیں مان رہے تھے وہ، تو کیوں نہیں ان کو بات سمجھ لگ رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ مثال ان کی اس طرح دے رہے ہیں، تمشیر اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں کو بلایا جاتا ہے، एक बंदा जो है वो शेपर्ड जो है वो अपने भेड़ बकरियों को बुला रहा है, गाय को, उनको, ऊँटों को हांक रहा है। वो गाय बकरियों को बात समझ ले रही है, वो क्या बात कर रहा है। अगर वो बिलफर्ज इतना बोल रहा हो कि जल्दी जल्दी चलो शाम हो रही है, देर हो रही है, उसको समझ लग रही होगी उन्हें कुछ। जानवर सिर्फ इस बात को पहचान लेंगे कि हाँ ये हमारा शेपर्ड है, और जब ये आवाज़ देता तो हमने करना है। लेकिन एग्जैक्टली वो कह रहा क्या, कह रहा है उन्हें, बोल क्या रहा है, वो जानवरों को क्या समझ लगेगी। लेकिन वो डेफ तो नहीं है ना, डेफ तो नहीं है, वो आवाज़ आ रही है उन तक, कानों में बात पड़ रही है, लेकिन बात के कॉन्टेंट्स नहीं पता कि वो कहा क्या जा रहा है। जिस तरह कोई जानवर की हमें आवाज़ आ रही है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा था कि जानवर क्या कह रहे हैं, पर आवाज़ तो आ रही है उसकी, बाकी ये कुछ नहीं पता कि कंटेंट्स क्या थे, मटेरियल क्या था उस बात के अंदर। तो यही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफिरों की मिसाल जो नहीं बात को सुनते, अड़ गए हैं इस बात के ऊपर कि नहीं, हमने अल्लाह ताला की बात माननी और अपने आबाव अजदाद की बात माननी है। उन लोगों के लिए इस तरह पुकारना, उनको बुलाना, ये बिल्कुल इस तरह जैसा जानवरों को पुकारा जा रहा है कि नहीं वो सुनते, मगर सिर्फ यही कि निदा तो आ रही है, साउंड आ रही है, लेकिन साउंड में है क्या वो कुछ नहीं पता लग रहा उन्हें। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये हरगिज़ नहीं अकल से काम लेंगे, बिल्कुल अकल नहीं रखते ये। ये जो आखिरी अल्फाज हैं ये कहाँ पे हमने पढ़े थे पहले, वो कुरान के शुरू में सूरह बकरा के अंदर आई थी आयत, जिसके अंदर भी इसी किस्म के अल्फाज है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन। वो तब बात हो रही थी मुनाफिकीन की, और तब मैंने बात बताई थी कि मुनाफिकीन कौन, क्रिश्चियंस में मुनाफिकीन, मुसलमानों में मुनाफिकीन। मुनाफिक है ही वो जो मुसलमानों के रैंक्स में शामिल होगा और अमल से खाली होगा या ईमान से खाली होगा। तो वही अल्फाज जो यहाँ पे पीछे पूरा खिताब हो रहा है, ये वही बात जो अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से लिंक अप हो रहे हैं कि आप बिल्कुल कतई ये ना समझें जो मैं आपको आयात बता रहा हूँ आज की, या आयात किसी नॉन मुस्लिम्स के लिए है, सिर्फ हमारे लिए है ही नहीं है। अल्लाह ताला को जिसको हुक्म दे रहे हैं कि खाओ पियो हलाल तैयब चीज़ों में से, और जो बंदा मानता ही नहीं अल्लाह ताला को, तो उसके लिए तो उस हुक्म की कोई वैल्यू है। ये हमारी बात हो रही है कि जो अल्लाह ताला को मानते हैं, अब अल्लाह ताला कहे मेरे इस हुक्म को मानो, फिर कह दिया शैतान से दूर रहना, खत्मों की पैरवी मत करना, वो तुम्हें गुनाह फहाशी और तुम्हें ऐसी बातों की तरफ लाएगा जो अल्लाह ताला ने बयान नहीं लिखी। और इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि अल्लाह ताला की बात को मानो, तो वो तो पीछे लगे रहते हैं कि हमारा कल्चर ही नहीं है भाई, ये आप क्या बातें कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये फिर उसका अंजाम पहुँचता है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक।